उन्हें केवल स्वाद के लिए खाते हैं। जब खाने की बात आती है तो आप इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि आपका डॉक्टर, आपका योगा टीचर या कोई और क्या कहता है। आपको इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि आपका शरीर क्या कहता है। अगर आप ये जागरूकता लाते हैं तो आप अपने आप ही सही खाना खाएंगे। जो जीभ को अच्छा लगता है उसे वो हम अलग से दे सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रयोग करके देखते हैं कि शरीर को क्या अच्छा लगता है और वो खाते हैं, तो आपके पास एक स्वस्थ और संतुलित इंसान के रूप में जीने का आधार होगा। तो ये सारा अस्तित्व ध्वनियों का एक जटिल संगम है। ये एक तरह की ध्वनि है, वो दूसरे तरह की ध्वनि, हर आकार एक खास तरह की ध्वनि है। अगर आप खुद ब खुद अपनी प्रकृति से मौन हो जाते हैं तो आपके शरीर में आम की ध्वनि गूंजने लगती है, क्योंकि आपके भौतिक अस्तित्व की बुनियादी ध्वनि आम है। जब आप आम का उच्चारण करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसके कारण शरीर में पैदा होने वाले कंपनों के प्रति जागरूक हों। बिना जरूरी जागरूकता के किसी भी ध्वनि को दोहराना आप में सुस्ती लाएगा। मौन का मतलब है वो जो नहीं है, ध्वनि वो है जो मौजूद है। मौन मतलब वो जो नहीं है। मौन ही सभी ध्वनियों का आधार है, है कि नहीं? मौन सभी ध्वनियों का आधार है। पूरा अस्तित्व एक स्पंदन है, ये आधुनिक विज्ञान है। जहां स्पंदन होता है वहां ध्वनि होनी ही है, तो पूरा अस्तित्व ध्वनि है। इन सभी ध्वनियों की मूल ध्वनि आम है, आम का मूल मौन है। मौन जीवन का सबसे शक्तिशाली आयाम है।
लाइफ इज प्रसीड ओनली इफ यू अवेयर।
जीवन की अनुभूति सिर्फ तभी की जा सकती है जब आप इसके प्रति जागरूक और सजग हों। फिलहाल आपकी याददाश्त आपकी जागरूकता पर हावी हो गई है और आपकी याददाश्त गलत है। हाँ, मैंने कल भी 10 बजते हुए देखा था। नहीं, वो 10 बजे बिल्कुल अलग था, ये 10 बजे बिल्कुल अलग है। न तो आप, न ये दुनिया और न ही ये ब्रह्मांड कल जैसा है। आया ना? इस अस्तित्व में कोई भी चीज़ खुद को दोहरा नहीं रही। अस्तित्व में कोई भी चीज़ दोबारा नहीं घटती, लेकिन आपका दिमाग दोहराता रहता है। चूंकि आपका दिमाग दोहराता रहता है और यादों में संचालित होता है, सजगता और जागरूकता से नहीं, इसीलिए लगता है एक और दिन। आप इस दुनिया में जीना चाहते हैं या अपने दिमाग में? आपको तय कर लेना चाहिए कि आप सृष्टा की सृष्टि में रहना चाहते हैं या फिर अपने खुद के झमेले में। अगर आप सृष्टा की सृष्टि में रहते हैं तो कोई भी इंसान जो अभी जिंदा है या जो जिंदा नहीं रहे, कोई भी इससे बेहतर सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकता। आया ना? क्या कोई इससे बेहतर और ज्यादा विविधता वाली सृष्टि की कल्पना कर सकता है? ये बहुत ज्यादा अद्भुत है। अगर आप सिर्फ एक परमाणु पर ध्यान दें तो आप 10 जन्मों में भी इसे नहीं जान पाएंगे। इसका निर्माण इतनी पेचीदगी के साथ और इतने परिष्कृत तरीके से हुआ है। अगर आप एक पत्ती पर ध्यान दें तो शायद उसे समझने में आपको अपना पूरा जीवन लगाना पड़े। आया ना? और इतनी शानदार और जटिल सृष्टि में लोग बोर भी हो सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, आप इस दुनिया से या अपने आसपास के लोगों से बोर नहीं हुए। आप सिर्फ इसलिए बोर हुए क्योंकि आप अपने दिमाग में अटके हुए हैं। एक ही बकवास आपके सिर में चलती रहती है। सृष्टि में कहीं भी एक ही बकवास नहीं चल रही। हाँ, सृष्टि में कहीं भी कोई भी चीज़ दोहराई नहीं जा रही। हर चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि आप अपने दिमाग में अटके हुए हैं वही बकवास जारी है। ऐसा लगता है अरे क्या रखा है।
What is there to be or not to be?
अगर आप सृष्टि की जीवंतता का अनुभव कर रहे हैं अपने आसपास और अपने भीतर, तो यहाँ 10 लाख साल जीना भी काफी नहीं है। आप जीवन का एक अंश भी नहीं जान पाएंगे। ये इतना जटिल, परिष्कृत और शानदार है, लेकिन हम इस ब्रह्मांड में नहीं जी रहे, हम इस पागलखाने में जी रहे हैं।
We have not understood the domain of the mind, where it should be, where it should not be.
हम दिमाग के दायरे को नहीं समझ पाए हैं कि इसे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। क्या टट्टी करना बुरी बात है? बताइए, जो लोग कुछ नहीं कह रहे, आपकी समस्या क्या है? क्या टट्टी करना बुरी बात है? नहीं, लेकिन आप इसे हर जगह नहीं करते। एक तरीका होता है। इसी तरह आपके दिमाग में भरी बकवास से भी कोई समस्या नहीं है, ये काम की है। अगर ये खास जगह पर रहे, अगर आप इसे हर जगह फैलाते हैं तो जीवन गंदा हो जाता है। हाँ, कुछ लोग इसे हर जगह फैलाते रहते हैं, कुछ लोग इसे अच्छे से संचालित करते हैं। हाँ, हर किसी के पास वही चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इसे गरिमा के साथ संचालित करेंगे, कुछ लोग इसे हर जगह फैलाएंगे। कोई इसे हर जगह इसलिए कर रहा है क्योंकि असभ्य, कोई समझ नहीं है, है ना? बात बस इतनी है। समय आ गया है कि हम इसे ठीक करें।
You know, since yesterday night when you went to sleep,
कल रात जब आप सोने गए और आज सुबह जब आप सोकर उठे, कम से कम 2.5 लाख लोग आज सुबह नहीं जागे। हाँ, कम से कम 2.5 लाख लोग सोने गए और सुबह नहीं जागे, वो कभी नहीं जागेंगे। और आप आज सुबह जाग गए, वाह, क्या ये बड़ी बात नहीं है? आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? आप जिंदा हैं, आया ना? नहीं सद्गुरु, लेकिन मैं इस नई मॉडल की कार लेना चाहता हूं, लेकिन ये हो नहीं रहा। तो आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज और आपके जीवन में सबसे शानदार चीज ये है कि आप जिंदा हैं। क्या आप जिंदा हैं? आप जिंदा हैं। कितने सारे लोग आज सुबह नहीं जागे, वाह, मैं जाग गया। हर दिन सुबह अपने लिए इतना कीजिए, सुबह जागने पर, अगर आप जागते हैं।
नो नो,
नहीं, ये मत सोचिए कि इसकी गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। बढ़िया है कि आज आप और मैं जाग गए, कई लोग नहीं जागे। और ये मत समझिए कि आप हर दिन जाग ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम जाग गए, कल इंतजार करते हैं और देखते हैं। अगर आप कल सुबह जाग जाते हैं तो क्या ये सबसे शानदार बात नहीं है कि आप वाकई जाग गए? तो अगर आप जाग जाते हैं तो सबसे पहले एक बड़ी सी मुस्कान, वाह, अभी भी जिंदा हूं। फिर अपने आसपास के लोगों को चेक कीजिए, आपकी पत्नी, पति, बच्चे, सभी लोग जो आपके जीवन में मायने रखते हैं, जाग गए, वाह। अगर 2.5 लाख लोग नहीं जागे तो कम से कम 50 लाख लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में कोई अहम इंसान आज नहीं जागा, है ना? आया ना? आप जाग गए और वो सभी लोग जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वो भी जाग गए, और क्या चाहिए? क्या ये शानदार नहीं है? समय बड़ा सापेक्ष यानी रिलेटिव अनुभव है। अगर आप आज वाकई खुश हैं तो 24 घंटे एक पल की तरह बीत जाएंगे। क्या आपने देखा है, किसी दिन आप बहुत ज्यादा खुश हैं, 24 घंटे उफ निकल गए। आप उदास हैं, 24 घंटे बिताना ही नामुमकिन है। टू बी और नॉट टू बी, कितना बोझिल है 24 घंटे, नामुमकिन, समय बीतता ही नहीं। तो समय एक बहुत सापेक्ष अनुभव है।
यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, इफ लाइफ इज फीलिंग लॉन्ग, इट्स सिंपली बिकॉज यू मिजरेबल।
आपको समझना चाहिए, अगर जीवन लंबा लग रहा है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दुखी हैं। अगर आप जीवंत हैं तो ये बहुत ही छोटा है। एक इंसान, जितनी विशाल संभावनाएं एक इंसान के भीतर होती हैं, उसके लिए सौ साल कुछ भी नहीं है, ये यूं ही निकल जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने दुख को लंबा खींचना चाहते हैं या खुशी को। अब इसके साधन, इसे जीवंत और खुशहाल जीवन बनाने के साधन आपके पास हैं। लेकिन साधन सिर्फ तभी काम आते हैं जब आप उनका इस्तेमाल करें। ये दूसरी चीजों की तरह ही है, इस्तेमाल करने वालों के लिए ही ये काम करते हैं। अब
इफ यू जस्ट एस्टैब्लिश अ फ्यू थिंग्स,
अगर आप बस कुछ बुनियादी चीजें स्थापित कर लें, बस एक आसान चीज, इसे अपनी बुनियाद बना लें, आप जहां भी जाएं बस उस जगह को देखें, उस जगह के जो भी नियम हों, जो भी उस जगह को कारगर बनाते हैं, वहां के सरल नियम, उन्हें अपना बना लें। तुरंत आप उसी पल उस जगह के साथ एक हो जाएंगे। एक दिन शंकरन पिल्लई के साथ ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई अपने बेटे से मिलने गया जो अमेरिका में रहता था, और उसके बेटे के पास 300 हॉर्स पावर की एक मस्टैंग कार थी। शंकरन पिल्लई ने सोचा कि वो इसे चलाने का मजा लेगा। मैंने पूरी जिंदगी गाड़ी चलाई है, अमेरिका में गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है, और वो गाड़ी लेकर निकल पड़ा। फिर उसके बेटे की पत्नी ने, उसकी अमेरिकन बहू ने उसे फोन करके कहा, आप जिस हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं उस पर एक पागल आदमी है। कैलिफोर्निया के जिस 101 सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं उस पर एक पागल आदमी उल्टी दिशा में गाड़ी चला रहा है, संभाल कर रहिएगा। उसने कहा, एक क्या, यहां तो सैकड़ों पागल लोग हैं। आप जहां भी जाते हैं उस जगह के सरल से नियम, बस अपने आसपास देखिए इस जगह के क्या नियम हैं, उन्हें अपना बना लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कोई खेल खेलना चाहते हैं, कोई भी खेल, उस खेल की रूपरेखा खेल के नियमों से तय होती है। नियमों को जाने बिना क्या आप खेल खेल सकते हैं? नहीं। और अगर आप फुटबॉल के मैदान में जाकर जिद करें, नहीं मैं तो बॉल को हाथ में लूंगा, ये बेवकूफी है ना? कुछ लोगों के साथ ये समस्या, अगर उन्होंने किसी तरह हाथ से बॉल, बॉल को छू लिया तो उन्हें यह स्मार्टनेस लगती है। आपने वो हैंड ऑफ गॉड वाली बात सुनी होगी, जब आप किसी खेल में उतरते हैं खेल का वजूद ही कुछ नियमों की वजह से होता है। अगर आप देखते हैं कि ये नियम मेरे नियम हैं, आप तुरंत उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप उसका एक हिस्सा हैं, केवल तभी आप उस खेल को जान पाएंगे, वरना आप उस खेल के पूरे अनुभव से चूक जाएंगे। आया ना? अगर आपकी योजना किसी तरह से जीवन से बचने की है तो ठीक है, आप हर खेल में अपने ही नियमों के साथ जा सकते हैं और उससे बाहर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर आपकी योजना जीवन को अनुभव करने की है, जितनी गहराई से हो सके उतनी गहराई से, तो जुड़ना ही एकमात्र तरीका है। अलग रहकर आप किसी चीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। केवल शरीक होकर ही आप जीवन को जान पाते हैं, है कि नहीं? आया ना? आप जिसके साथ शरीक हैं, आप सिर्फ उसे ही जान पाएंगे। आप जिसके साथ शरीक नहीं हैं, आप उसे नहीं जान पाएंगे। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, किसी भी जगह, और आप उस जगह के नियमों से सहमत नहीं हैं। पहली चीज़ आपके साथ ये होगी कि आप शरीक नहीं हो पाएंगे। अगर आप शरीक नहीं हैं, तो आप अनुभव भी नहीं कर सकते। अगर आप इस जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, चाहे आप जहाँ भी हों, अगर आप गहरे से गहरा अनुभव करना चाहते हैं, तो इसके लिए भागीदारी की ज़रूरत है। भागीदारी आप में तब तक नहीं आएगी जब तक आप ये नहीं देखते कि वो कौन से नियम हैं जो उन हालातों को संभव बनाते हैं और उन्हें अपना बना लें। अगर आप जंगल में जाएं, तो आपको शहर में पले किसी मूर्ख की तरह नहीं जाना चाहिए। आपको एक बाघ की तरह चलना चाहिए। वो कैसे चलता है, कैसे देखता है, कैसे चीज़ें करता है, अगर आप इस तरह करेंगे तो आप जंगल को जान जाएंगे। आप इसका आनंद लेंगे। वरना मुझे देखकर हैरानी हुई कि कुछ समय पहले अभी हमने ईशा में बच्चों की एक पूरी नई पीढ़ी तैयार की है, मगर कुछ समय पहले हमारे पास बैंगलोर से स्कूल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप आया और हमें उन्हें जंगल में लेकर जाना था और वहाँ कैंप लगाना था। मुझे लगा कि ये एक बच्चे के लिए सबसे रोमांचक चीज़ है। उन्होंने कहा, अरे बिस्तर नहीं होगा क्या, टॉयलेट नहीं होगा, सुबह हम कहाँ जाएंगे? मुझे लगा कि ये कुछ और ही है, क्योंकि जब मैं 10 साल का था, 9-10 साल का था, अगर मेरी जेब में 10 रुपये होते थे उन दिनों, तो मैं एक नोट छोड़कर गायब हो जाता था। नहीं, मैं अपने माँ बाप की दुर्दशा की बात नहीं करूँगा। पुलिस शहर में हर जगह मुझे खोजती फिरती थी और ऐसी चीज़ें होती थी। मैं बस इतना करता हूँ कि मैं जंगल में हूँ, पूरी रात घूमता, पेड़ों पर सोता, कुछ सांप पकड़ता, और जब मेरी ब्रेड खत्म हो जाती, मैं वापस आ जाता। ऐसी कुछ घटनाओं के बाद मेरे माता पिता ने इसके साथ समझौता कर लिया, ठीक है, ये जाकर वापस आ जाता है। मेरे पिता उन दिनों, ये बहुत मज़ेदार है, आजकल बच्चों के पास सब कुछ होता है, घर में सिर्फ एक टॉर्च लाइट थी, ठीक है, 4 सेल वाली टॉर्च लाइट, एवर रेडी टॉर्च होती थी, और 4 सेल उसके बगल में होते थे, क्योंकि अगर आपने अंदर रखे तो वो लीक हो जाएंगे, पता है ना? अब नहीं, अब तो LED टॉर्च आ गए हैं। मेरे पिता के अलावा किसी और को इस हाई टेक्नोलॉजी को हैंडल करने की इजाजत नहीं थी। अगर बिजली चली जाए तो सिर्फ वही जानते थे कि कैसे। तो टॉर्च का सवाल ही नहीं था, घड़ी का सवाल ही नहीं था। मैं बस जंगल में जाता था और मैंने ऐसी क्षमता विकसित की, आज भी मैं कहीं टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करता। अगर मैं जंगल जाता हूँ तो मैं किसी भी टॉर्च लाइट के बिना अपने आप चलता हूँ, क्योंकि मैंने अंधेरे में देखना सीख लिया था। उसके लिए बस थोड़े ज़्यादा गौर से देखने की ज़रूरत होती है। अगर आप अधिक ध्यान देते हैं तो आप अंधेरे में देख सकते हैं, इतना तो देख ही सकते हैं कि आप किसी गड्ढे वगैरह में ना गिरें, कुछ भी देख लें और जंगली जानवरों वगैरह को देख लें। तो मैं बस घूमता फिरता जंगल में 3-4-5 दिनों तक रहता। जब ब्रेड खत्म हो जाती, मैं वापस आ जाता।
So this became a normal excursion for me.
तो ऐसी सैर मैं अक्सर किया करता था, मगर जब ये बच्चे आए तो उनकी चिंता ये थी कि जंगल में बिस्तर नहीं है। मैं पेड़ों पर, टहनियों पर सोता था। तो जब आप जंगल में घुसते हैं तो जंगल के जो नियम हैं, अगर आप उन्हें अपना बना लें, तो आप तुरंत शामिल हो जाते हैं, जो आपको जीवन के एक भव्य अनुभव की अनुमति देता है। अगर आप उन नियमों को अपना नहीं बनाते तो अचानक आप उससे बाहर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हर चीज तकलीफ दे रही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझ पर सबसे अधिक असर किसका पड़ा था। उन्हें लगता है कि मैं किसी साधु संत से मिला होऊंगा, या किसी मंदिर में गया होऊंगा, या किसी उपदेश या भगवद गीता या वेद उपनिषद का असर पड़ा होगा। नहीं, एक बार मैं गोपाल स्वामी बेट्टा से नागरहोले तक गया, जो एक रिजर्व फॉरेस्ट है। सीधी लाइन में ये दूरी 63 किलोमीटर है, मगर मैं 23 दिनों में 350 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चला होऊंगा। कुछ दोस्तों को साथ आना था, वो कभी आते ही नहीं, तो मैं अकेले निकल गया। चौथे दिन खाने का सामान खत्म हो गया, मैं जंगल पर ही निर्भर रहा। मैंने छत्ते से शहद पिया, मधुमक्खियां खाई और दीमक खाए। इस तरह मैं जंगल में जिंदा रहा। मैंने हर तरह के जानवर देखे, बाघ, हाथी और बहुत सी चीजें। 23 दिन। 8वें दिन मैं अपनी आधी कमीज से हाथ धो बैठा, मेरी आधी कमीज फट गई। तो आधी कमीज के साथ तेज बारिश में मैं इससे गुजरा, और वहां सबसे बड़ा अनुभव कीड़े मकोड़ों का था। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको जंगल में जाकर देखना चाहिए। उनके पास ऑर्केस्ट्रा होता है, वो शुरू कर देते हैं, उनका समय बिल्कुल सटीक होता है। आपको विश्वास नहीं होगा, आधी रात को ठीक 1 बजे टुक एक झुंड रुकेगा, 1 मिनट के अंदर दूसरा झुंड शुरू कर देगा। उन्हें सब पता होता है, सटीक समय। मैं सोचता था मेरे पास घड़ी नहीं है, मगर उनकी अपनी घड़ी है जिसमें सही समय होता है, और वो कुछ ऐसा कहते हैं जो आप समझ नहीं सकते। जब आप बाहर आते हैं, आपने बाघ देखे, आपने हाथी देखे, ये बड़ा अनुभव नहीं है। कीड़े मकोड़ों का हुनर और जो काम वो करते हैं, असल में पूरा जंगल कीड़े मकोड़े ही चलाते हैं, बाघ और शेर नहीं। दरअसल पूरी धरती वही चलाते हैं। अगर आप शरीक नहीं हैं तो आप सारी चीजों से चूक जाएंगे, चाहे वो सामाजिक हालात में हो, शहर में हो, जंगल में हो, या कहीं भी हो। आप शरीक तभी हो पाएंगे जब उस खेल के जो भी नियम हैं उसे अपना बना लीजिए। आप तुरंत उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। जैसे ही आप उसका एक हिस्सा बनते हैं, आप उसे किसी से भी बेहतर जान पाते हैं, बशर्ते आप जीवन का अनुभव करना चाहते हो। अगर आप किसी तरह से जीवन से बचकर निकलना चाहते हैं, एक बार आप दुखी हो गए, आपका मकसद सिर्फ जीवन से बचना होगा, न कि जीवन का अनुभव करना। अगर आपका अनुभव खुशनुमा है तो आप इसे और भी ज्यादा चाहते हैं, अगर आपका अनुभव कड़वा है तो आप इसे और भी कम चाहते हैं, है ना? और सबसे अहम बात यह है कि खुद को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। अगर आप दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद कर दें तो यह बढ़िया होगा, लेकिन मैं आपके जीवन के सामाजिक दायरे में नहीं जाऊंगा। हम नहीं जानते कि आपका पेशा क्या है। मैं उन चीजों को छेड़ना नहीं चाहता। कम से कम खुद के साथ, इस एक इंसान के साथ, क्या हम 100% ईमानदार हो सकते हैं? 100%? इस एक इंसान के साथ कोई चालाकी नहीं। खुद के साथ बस इतना कीजिए, यह आपका अधिकार है। ऐसा करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये एक चीज कर लेते हैं तो मैं बता रहा हूं कि आपको कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप खुद ब खुद आध्यात्मिक मार्ग पर होंगे। समझे आप?
Too many people on the planet are innocent of integrity.
इस धरती पर कुछ ज्यादा ही लोग हैं जो ईमानदारी से अनजान हैं। वो नहीं जानते कि ईमानदार होने का क्या मतलब है। जिस पल आप इसे, मैं और उसे कोई और मानने लगते हैं, आपकी ईमानदारी जा चुकी है। जिस पल आप में पसंद और नापसंद, प्यार और नफरत होती है, आपकी ईमानदारी जा चुकी है। आप वैसे भी चीजों को बढ़ाने चढ़ाने लगेंगे, है ना? मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, यानी अब मुझे उसकी तमाम खूबियों को बढ़ाना चढ़ाना होगा, वरना आपका लव अफेयर चल नहीं पाएगा। आया ना? आपको खुद से हर तरह के झूठ बोलने पड़ेंगे कि ये इस दुनिया का सबसे शानदार इंसान है, जो सच नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। अगर आप बस उन्हें वैसा देखें जैसे वो हैं, अगर कृपया समझें कि प्यार किसी और के बारे में नहीं है, ये आपके होने का तरीका है। आप प्यार में हो सकते हैं, आप किसी के साथ प्यार में नहीं हो सकते। अभी आप ये कर रहे हैं कि जो चीज़ आपके भीतर है उसे खोलने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को एक चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम ताले को तोड़ दें? ताला है ही नहीं। क्या कोई ताला है? क्या आपकी भावनाओं पर कोई ताला है? बताइए, अगर आप चाहें तो क्या आप ऊपर आसमान को देखकर आसमान से प्यार कर सकते हैं? क्या आप पेड़ के साथ प्यार कर सकते हैं? अगर मुझे इस पेड़ से प्यार है तो क्या उस पेड़ पर मेरा हक होना चाहिए? नहीं, बस यूं ही गुजरते हुए हर चीज के साथ प्यार करना, क्या ये संभव है? बताइए। क्योंकि प्यार आपके होने का तरीका है, इसका किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप प्यार में हैं तो आप जिसे भी देखते हैं वो सुंदर लगता है। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो हर चीज एक समस्या है, हर चीज एक समस्या होती है और हर इंसान एक समस्या होता है। और आपका प्यार पुश स्टार्ट पर नहीं होना चाहिए, यह सेल्फ स्टार्ट पर होना चाहिए, है ना? आया ना? आपके पास इसे जगाने की क्षमता होनी चाहिए। आपके भीतर इसे जगाने के लिए एक दूसरे इंसान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप जीवन के साथ शामिल नहीं हैं। अगर आप पूरी तरह से, लव अफेयर क्या होता है? लव अफेयर का मतलब बस इतना है, आपने सिर्फ एक इंसान के साथ शामिल होना चुना है, बाकी लोगों के लिए नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप फुल टाइम इंसान होना चाहते हैं या पार्ट टाइम इंसान?
फुल टाइम।
आपने तय कर लिया फुल टाइम या पार्ट टाइम? अगर आप एक फुल टाइम इंसान हैं तो आपका दिल हर चीज के लिए धड़कता है। हो सकता है कि आप शारीरिक तौर पर हर चीज के साथ शरीक ना हो पाएं, लेकिन आपका दिल हर चीज के लिए धड़कना चाहिए, है ना? वरना आप सिर्फ एक पार्ट टाइम इंसान हैं।
फुल टाइम, फुल टाइम। टेल मी ओवर टाइम।
ओवर टाइम कहिए। ये विकल्प हर इंसान के पास होता है कि वो पार्ट टाइम इंसान हो या फुल टाइम इंसान।
A human being is capable of making his whole life into a love affair.
एक इंसान अपने पूरे जीवन को एक लव अफेयर बनाने के काबिल है, क्योंकि प्यार को किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। आप बस यूं ही प्यार में हो सकते हैं। अगर इस धरती पर कोई भी दूसरा इंसान ना हो तो क्या आप सड़क पर प्यार के साथ नहीं चल सकते? अगर आप इस दुनिया में अकेले इंसान हैं, क्या आप यहाँ प्यार के साथ नहीं बैठ सकते? क्या दिक्कत है? आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस धरती पर लाखों लोग ऐसे हैं जो सुबह अगर अपनी आंखें बंद करें तो प्यार और आनंद के आंसू बहने लगेंगे। उन्हें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। अगर वो बस अपनी आंखें बंद कर लें, बूम। और हमें इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोगों को बनाने की जरूरत है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज धरती पर दुखी लोगों के हाथ में ताकत है जो बहुत खतरनाक है। दुखी लोग दुनिया पर शासन कर रहे हैं। एक बार दुनिया के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझसे पूछा, सद्गुरु, अगर हम आपके लिए कोई एक ऐसी चीज कर सकें जिसके जरिए हम इस दुनिया को बदल सकें, तो वो चीज क्या होगी? मैंने कहा, मैं 25 लोगों का नाम लूंगा, आप उन्हें 5 दिनों के लिए मुझे दे दीजिए, आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 साल में पूरी दुनिया में जबरदस्त बदलाव आ जाएगा। उन्होंने पूछा, ये 25 लोग कौन हैं? मैंने दुनिया के 25 महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के नाम गिना दिए। आप इन्हें मुझे बस 5 दिनों के लिए दे दीजिए, आप देखेंगे कि दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि पहली बार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मानवता के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पीढ़ी के तौर पर हमारे पास सभी जरूरी संसाधन, तकनीक और क्षमता मौजूद है हर मानव समस्या का समाधान निकालने के लिए। इससे पहले कभी ऐसा संभव नहीं था, यहां तक कि आज से 25 साल पहले भी ये संभव नहीं था। आज पहली बार हमारे पास संसाधन है, काबिलियत है, टेक्नोलॉजी है हर मानव समस्या से निपटने के लिए। सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है मानव चेतना। लोगों में समावेश की भावना नहीं है। हर इंसान अलग होने की तरफ काम कर रहा है। ये 25 लोग, अगर इनके दिल और दिमाग 10% भी बदल जाते हैं तो ये दुनिया नाटकीय ढंग से बदल जाएगी। आया ना? बस इतने की जरूरत है। अगर ये लोग दुनिया को थोड़े ज्यादा आनंद से, थोड़े ज्यादा प्यार से देखें तो वो अलग तरीके से काम करेंगे। हम उनसे प्यार के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम उन्हें ऐसी तकनीक देंगे जिसके जरिए उनके दिल स्वाभाविक तौर पर पिघलेंगे और उनके सोचने और काम करने के तरीके में समावेशन की एक अलग तरह की भावना आ जाएगी। देखिए, सन 2010 में, अब तो स्थिति और भी बेहतर होगी, सन 2010 के आंकड़ों के अनुसार हमने इस धरती पर 18 अरब लोगों के लिए पर्याप्त खाना पैदा किया था। उस दिन हम केवल 6.5 अरब लोग थे, लेकिन फिर भी आधी आबादी भूखी रहती है। अगर खाना मौजूद नहीं है और हम भूखे हैं तो ठीक है, क्या किया जाए, ये हमारी किस्मत है। लेकिन अगर खाना मौजूद है और लोग भूखे हैं तो ये एक अपराध है ना? आया ना? अगर पर्याप्त खाना मौजूद है और फिर भी आधी आबादी भूखी है तो हम सभी लोग जो अच्छे से खा रहे हैं अपराधी बन जाएंगे। और ये अपराध हर रोज हो रहा है, क्योंकि हम एक समावेशी तरीके से नहीं सोच रहे हैं। हमारा अनुभव समावेशी नहीं है, हमेशा मैं बनाम बाकी सब। अगर हम बस कुछ ऐसा करें कि दुनिया के नेता ध्यान या मेडिटेशन करने लगें तो दुनिया बदल जाएगी। अपनी पहचान अपने धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से जुड़ने के बजाय अगर वो मानवता से पहचान जोड़ लें तो हर चीज अलग होगी, है ना? अगर वो बस इस तरह, क्या आप जीवन का एक अंश है? आप जीवन का एक अंश है या नहीं? अगर आप यहाँ जीवन के एक अंश की तरह जीते हैं तो सबको शामिल करना आपके लिए स्वाभाविक है। अगर आप यहाँ एक हिंदुस्तानी, एक चीनी, एक अमेरिकन, एक आदमी या एक औरत के तौर पर रहते हैं तो आप इस दुनिया को लाखों अलग अलग तरीकों से बांट रहे हैं और फिर आप इसे राजनैतिक कौशल से सुधारने की कोशिश करते हैं। आप इसे ऐसे ठीक नहीं कर सकते। आपने ही बंटवारा किया और आप उसे ठीक करना चाहते हैं। पहले बंटवारा करके फिर जोड़ने की कोशिश क्यों करना? अगर आप हर चीज को बस जीवन की तरह देखते हैं तो बात खत्म हो जाती है ना? आप हर चीज को जीवन की तरह देख पाए इसके लिए सबसे पहले आपकी बुनियादी पहचान इस भौतिक शरीर से हटकर भीतर मौजूद जीवन से होनी चाहिए, क्योंकि भौतिक की प्रकृति ही सीमा है। भौतिक हमेशा सीमाओं के साथ आएगा और भौतिकता के लिए सीमाओं की जरूरत होती है। हम सारे शरीरों को आपस में मिला नहीं सकते, ये संभव नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जीवन, हमारे भीतर मौजूद जीवन और ऊर्जा, इन्हें हम मिला सकते हैं क्योंकि ये पहले से ही मिले हुए हैं। आया ना? ये पहले से ही मिले हुए हैं। आपको और मुझे कुछ नहीं करना है। अगर हम अलग अलग होने का भ्रम पैदा करना बंद करते हैं तो जीवन पहले से ही एक इकाई की तरह घटित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसे एक बनाने के लिए आपको और मुझे कुछ करना होगा। ये एक विशाल घटना के रूप में हो रहा है ना? आप इस ब्रह्मांड में एक अलग घटना नहीं है, आप बस इस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं। बस इतना है कि आपके दिमाग में ऐसे अजीब विचार हैं और ये अजीब विचार अब कोई मजाक की बात नहीं रह गए हैं।
These funny ideas are costing enormously.
इनकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। धरती पर सबसे बड़ा उद्योग हथियारों और लड़ाई के सामान का है, उसके बाद अगला सबसे बड़ा उद्योग दवाओं का है और तीसरा है शराब का। एक से सीधे मौत मिलती है, दूसरा मौत का आधा रास्ता है और तीसरा आपको मौत से वापस लाने का दिखावा करता है। दुर्भाग्य से जीवन को समृद्ध करने वाला कोई भी उद्योग प्रमुख नहीं है। अगर खाद्य उद्योग बड़ा होता तो कोई हर्ज नहीं, अगर कोई दूसरा उद्योग बड़ा होता तो भी ठीक था। हथियार और लड़ाई का सामान, दवाएं और शराब, इस क्रम में यह साफ दिखाता है कि हमारी चेतना कहाँ है। इस धरती पर अभी जिस सबसे महत्वपूर्ण काम को करने की जरूरत है वो है मानवीय चेतना का उत्थान। बाहरी तकनीकें अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं।
यू डोंट नीड 6S आईफोन, ओके?
आपको 6S आईफोन की जरूरत नहीं है, आप 5S के साथ अगले 10 साल काम चला सकते हैं। आया ना? ये चीज़ें आपसे कहीं ज़्यादा काम कर लेती हैं, है ना? उन्होंने मेरे फ़ोन में लगभग 50 ऐप डाले हुए हैं, मैंने अभी तक एक भी ऐप नहीं खोला है। मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोग मौजूदा फ़ोन की क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना? अब इन चीज़ों को और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं। जिसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है वो है इंसान। मानव चेतना को ऊपर उठाए बिना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपलब्ध होना एक ज़्यादा बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के पास खुद का दिमाग नहीं होता। इसका इस्तेमाल करने वाला ही तय करता है कि ये क्या करती है। हाँ, अगर गलत लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हर चीज़ तबाही पैदा करती है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मानव चेतना को ऊपर उठाना।
We're making a huge effort in this direction.
हम इस दिशा में ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं, और आप में से हर कोई अगर अपने जीवन और अगली पीढ़ी के जीवन के प्रति चिंतित हैं तो आपको समझना चाहिए कि आज हमें शूट करने के लिए एक नई किस्म की बंदूक की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हम बस अपनी बुद्धि और धरती के संसाधन दोनों ही गैर ज़रूरी तरीक़ों से बर्बाद कर रहे हैं। इन सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस धरती पर रहने वाले हर इंसान। और हर प्राणी के जीवन को बेहतर बनाने में, क्योंकि उनके बिना हम भी नहीं जी सकते। इंसानों के बिना धरती ज़्यादा अच्छे से फलेगी फूलेगी, है ना? अगर सभी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में लोगों ने मुझसे पूछा, सदगुरु आखिर इसका क्या हल है, मैंने उनसे कहा था, वैसे भी आप लोग जो भी हल निकाल रहे हैं वो कैंसर के लिए बैंडेड लगाने जैसा है। आपको कैंसर हो गया, आप एक बैंडेड यहाँ लगाते हैं, एक बैंडेड यहाँ लगाते हैं, और आपको लगता है कि आप ठीक हो गए। तो आपने एक विंड मिल लगा दी, एक सोलर पैनल लगा दिया, ये सब तो ठीक है, मैं इस नई खोज की सराहना करता हूँ, लेकिन ये समाधान नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हम खपत कर रहे हैं, अगर आपको सोलर पैनल लगाने हैं तो आपको पूरी धरती ढंकनी पड़ेगी, सूरज ही नहीं दिखेगा, इतने सारे सोलर पैनल लगाने होंगे। मैं कह रहा हूँ कि इसे इस तरीके से देखने के बजाय हमें इसे दूसरे तरीके से देखना होगा कि हम कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, और हमारी संख्या कितनी होनी चाहिए। एक सबसे सरल चीज़ होगी, मैंने कहा, अगर दुनिया के सभी इंसानों को 25 सालों के लिए सुला दिया जाए तो आपकी इमारतों पर जंगल उगाएंगे, हाँ, आपके फर्श में पेड़ उगाएंगे। अगर हम में से कोई भी यहाँ नहीं है, अगर हम अगले 25 सालों तक यूं ही सोते रहें और कोई बच्चे पैदा ना करें, हाँ, आया ना? 7 अरब लोग, हम बहुत ज़्यादा हैं, हम अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। 20वीं सदी के शुरू में हम लोग बस 1.6 अरब लोग थे, आज हम 7.2 अरब हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सन 2050 तक हम 9.6 अरब लोग होंगे। अगर इस धरती पर 9.6 अरब लोग हो गए तो हम सबको आज की तुलना में 40% कम संसाधनों के साथ काम चलाना पड़ेगा। जब मैं संसाधनों की बात करता हूँ तो मेरा मतलब तेल या सोने वगैरह से नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ पानी, हवा और भोजन की। शायद भोजन हम पैदा कर लें, लेकिन हम ज़्यादा हवा और ज़्यादा पानी पैदा नहीं कर सकते, ये तो बस इतना ही रहेंगे, है ना? भारत में सन 1947 से 65 सालों में 1947 में प्रति व्यक्ति जितना पानी उपलब्ध था, आज उसका सिर्फ 20% पानी ही उपलब्ध है। सन 2025 तक ये सिर्फ 7% रह जाएगा। हिंदुस्तानियों को नहाने का ज़बरदस्त शौक है, हम सभी दिन में 3 बार नहाते हैं, जब हम साधना करते हैं तो दिन में 5 से 7 बार नहाते हैं। कम से कम 1 बार तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, 2 बार सामान्य बात है, बहुत से लोगों के लिए 3 बार भी आम बात है। उन्हें एक बोतल से नहाना होगा। सन 2025 तक बोतल स्नान। चीज़ें इसी दिशा में जाएंगी, और ये कोई मजाक नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए, ऐसा किसी और वजह से नहीं है, हम लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से रह रहे हैं बिना भागीदारी के। हमारी कोई भागीदारी नहीं है इस धरती के साथ, जीवन के साथ, अपने खुद के जीवन के साथ, और न ही अपने आसपास चल रहे जीवन के साथ हम ज़रा भी शरीक नहीं हैं। हम हर वक्त बस दिमागी बकवास में डूबे रहते हैं। आप जो सोचते हैं वो आपके अस्तित्व की बुनियाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो ध्यान एक आसान सा साधन है। जब आप ध्यानशील हो जाते हैं तब आपके और आपके मन के बीच एक दूरी आ जाती है। एक बार ये दूरी आ गई, अब आप जीवन को वैसे ही देखते हैं जैसा वो है। अगर ऐसा पूरी आबादी के साथ हो जाए तो ये बहुत ही शानदार होगा। कम से कम अगर ये उन लोगों के साथ हो जाए जो इस धरती पर जिम्मेदार औहदों पर और सत्ता में बैठे हुए हैं, तो शानदार चीज़ें होंगी। आपको अपने लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करने की ज़रूरत है कि आप थोड़े ज़्यादा उन्नत इंसान हों। उन्नत होने का मतलब है, ऊंचाई का मकसद है कि आप बेहतर तरीके से देख सकें। हाँ, अगर आप ऊपर उठते हैं तो आप बेहतर देख पाते हैं। अगर आप इसी में फंसे रहे तो आपके अपने मुद्दे होंगे और आप इसे एक खास तरह से देखेंगे। जैसे ही आप ऊंचाई में जाकर नीचे देखते हैं, आपको हर चीज का एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है, और ये हर इंसान के लिए जरूरी है। हर इंसान को दिन में कम से कम कुछ पलों के लिए ही सही ऊपर उठकर अपने जीवन पर नजर डालनी चाहिए, ताकि वो अपनी बेवकूफियां हमेशा के लिए जारी न रख सके, वो होश में आ जाएगा। अगर आप ऊंचाई से देख सकें तो कई चीजें जो आप कर रहे हैं आपको उनकी निरर्थकता साफ दिखाई देगी और उसे तुरंत सुधारा जा सकता है। जीवन जीने के कई तरीके हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अपने भीतर कैसे हैं। इन 7 दिनों में हमने सिर्फ इसी पर ध्यान दिया है। आप बार बार पूछ रहे हैं, ये तो ठीक है लेकिन ये कैसे करें, वो कैसे करें। मैं आपको उससे दूर ले जाता रहा हूं, उन सवालों का जवाब न देकर और बस इस पर जोर देकर कि कैसे होना चाहिए, क्योंकि कैसे होना है यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता है कि कैसे होना है तो कैसे करना है ये आप खुद ही जान जाएंगे। मैं जीवन में कैसे चीजें करूं, मुझे अपने पति के साथ कैसे होना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ कैसे होना चाहिए, अपने दोस्त के साथ कैसे होना चाहिए, अपने बच्चे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, अपने माता पिता के साथ कैसे पेश आना चाहिए, सड़क पर खड़े एक अजनबी इंसान के साथ कैसे पेश आना चाहिए, अगर आप एक नीति बना लेते हैं उनसे पेश आने का ये तरीका है, तो आप पागल हो जाएंगे और कोई भी आपके साथ नहीं रहना चाहेगा।
यू नो हाउ टू बी, यू हैव बिकम ब्लिसफुल विद इन यू।
आप जानते हैं कि कैसे होना है, आप अपने भीतर आनंदमय हो गए हैं, फिर आप जो चाहे वो कीजिए, हर चीज काम करेगी। हाँ, तो हम सिर्फ उसी पर ध्यान देते रहे हैं, मगर फिर भी ये चीज आपको परेशान करती है कि काम कैसे किया जाए।
On a certain day,
एक दिन की बात है, किसी जगह पर 3 आदमी काम कर रहे थे। एक और आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने पहले आदमी से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कहा, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, मैं पत्थर काट रहा हूं। वो पत्थर ही काट रहा था। उसने दूसरे आदमी के पास जाकर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने कहा, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मैं कुछ काम करता हूं। उसने तीसरे आदमी के पास जाकर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी बहुत खुशी के साथ खड़ा हुआ और बोला, मैं यहां एक शानदार मंदिर बना रहा हूं। तीनों लोग एक ही काम कर रहे हैं। एक आदमी के अनुभव में वो सिर्फ पत्थर काट रहा है, दूसरे आदमी के अनुभव में वो कुछ बेमतलब का काम कर रहा है बस अपना पेट भरने के लिए, किसी और आदमी के अनुभव में वो एक ऐसी चीज बना रहा है जो उसके लिए वाकई मायने रखती है, जिसकी वो वाकई परवाह करता है। हर एक काम जो आप अपने जीवन में करते हैं वो आप इन तीनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हैं। आप सिर्फ पत्थर काट सकते हैं, या अपना पेट भरने के लिए कुछ बकवास कर सकते हैं, या उसका निर्माण कर सकते हैं जिसकी आपको सचमुच परवाह है। अगर आप गौर करें कि आखिर वो क्या है जिसकी आपको सचमुच परवाह है, तो आपको देखना होगा कि आप खुद के लिए और अपने आसपास की दुनिया के लिए क्या चाहते हैं, है ना? आप किस तरह के इंसान होना चाहते हैं, आप किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं, आप किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं, एक आदर्श दुनिया। ये ना सोचें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, आदर्श इंसान और आदर्श दुनिया। अगर आपके पास मौका हो तो आप किस तरह के इंसान होना चाहेंगे और आप किस तरह की दुनिया में रहना चाहेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी। अगर संभव या असंभव का सवाल ना हो तो आप किस तरह का इंसान होना चाहेंगे?
एक स्वस्थ इंसान जो अपनी पूरी क्षमता से नई चीज़ों का निर्माण कर रहा है, जो इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। मैं इसे अपने बच्चों के लिए और भी बेहतर बनाना चाहता हूँ।
वो बेहतर जगह क्या है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ।
एक हरी दुनिया।
हरी क्यों, फूलों से भरी हुई और लाल क्यों नहीं?
हाँ वो लाल भी हो सकती है।
तो रंग कोई समस्या नहीं है।
एक स्वस्थ पर्यावरण।
आप एक स्वस्थ पर्यावरण क्यों चाहते हैं?
क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ और खुश रहना चाहता हूँ।
तो आप एक खुशहाल दुनिया चाहते हैं। इसके विस्तार में मत जाइए। आप एक खुशहाल दुनिया चाहते हैं। खुशहाल होने के लिए आप जानते हैं कि धरती हरी होनी चाहिए
और बैंगनी और सफेद भी।
आप जो भी काम करते हैं उसे करते हुए आप उसका निर्माण कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, या आप कुछ बेकार की बकवास कर सकते हैं। अगर आप वाकई खुद पर गौर करें तो एक स्तर पर आप एक खुशहाल इंसान होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दुनिया भी खुशहाल हो। हाँ, आप प्यार से भरे होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दुनिया भी प्यार से भरी हुई हो। आप एक प्यार भरी दुनिया चाहते हैं। साफ साफ सुनाई देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जो चाहते हैं, कम से कम आप खुद से वो चीज बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि मैं एक प्यार भरी दुनिया चाहता हूँ। क्या आप एक शांतिपूर्ण दुनिया चाहते हैं? हम एक प्यार भरी दुनिया बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। क्या हम इसे 1 सितंबर से शुरू करें? 1 सितंबर से? क्योंकि अगर आप एक प्यार भरी दुनिया चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? अभी आपके भीतर से, है ना? प्यार भरी दुनिया का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पर जाकर हर किसी से कहें मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या आप अपने ऑफिस में प्यार के साथ बैठ सकते हैं? सड़क पर प्यार के साथ चल सकते हैं? अपना सारा काम प्यार के साथ कर सकते हैं? तो हाँ, मैं प्यार भरा होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, जलन, डर और नफरत भी होती है, मैं क्या करूँ? ठीक है, यही हमारा मुद्दा है। अब यही सच है कि आप दिन में 2400 घंटे प्यार के साथ नहीं रह पाते।
Can you at least take a commitment?
क्या आप कम से कम एक संकल्प ले सकते हैं कि हर दिन सुबह सुबह सबसे पहले आप मन में बस एक विचार पैदा करें? ठीक है, सुबह क्या आप आज से ये कर सकते हैं? जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले आप मुस्कुराएं और फिर अपने दिमाग में एक विचार लाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप मुस्कुराएं और अपने दिमाग में एक विचार पैदा करें, आज मैं एक प्यार भरी दुनिया बनाऊंगा। बस अपने अंदर, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप एक प्यार भरी दुनिया बनाने का संकल्प ले सकते हैं? अगर आपका संकल्प पक्का है, अगर आप 100 बार गिरते हैं तो क्या किया जाए? उठिए और आगे बढ़िए। अगर आपका संकल्प पक्का नहीं है तो एक बार फिसलते ही, मैंने तुमसे कहा था ना, ये नहीं हो सकता। अगर आपका संकल्प ढीला है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो चीज़ चाहे संभव हो या ना हो, आप जिस चीज़ की परवाह करते हैं उसके लिए काम करना क्या महत्वपूर्ण है? आपका जीवन सिर्फ तभी सुंदर होता है जब आप उसका निर्माण करते हैं जो आपके लिए मायने रखता है, है ना? अगर आप कोई बेकार की चीज़ कर रहे हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखती, अगर वो नहीं होती तो दुख होता है, अगर वो हो जाती है तो दुगना दुख होता है ना? आया ना? अगर आप उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जिसकी आप वाकई परवाह करते हैं तो उसे करने की प्रक्रिया ही एक बड़ा आनंद है। अगर वो होता है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इसे एक बार फिर से कर सकते हैं। आया ना? अगर आप वाकई उसका निर्माण कर रहे हैं जिसकी आप परवाह करते हैं, उसे बनाने के अगर आपको 2 मौके मिले तो क्या ये और भी अच्छी बात नहीं है? अगर आप उस प्रक्रिया को झेल रहे हैं, अगर वो नहीं होता तो आप पागल हो जाएंगे। अगर आप उस प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं, तो अगर आपको 2 मौके मिलते हैं तो क्या ये और भी अच्छा है? अब एक शांतिपूर्ण दुनिया, खुशहाल दुनिया, प्यार भरी दुनिया बनाने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बाहर कुछ करना होगा। पहली चीज, अगर ये वैसा है तो आप जहां भी जाएं आप यही बनाएंगे। आप जो हैं आप वही करेंगे, है ना? आप उससे अलग कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं वैसा नहीं हूं, मैं क्या करूं? क्या हम खुद को वैसा बनाने का संकल्प ले सकते हैं? क्या ये आपके लिए महत्वपूर्ण है? प्यार भरा होना किसी और की सेवा नहीं है। क्या प्यार भरा होना आपके लिए एक सुखद अनुभव है, या गुस्से या नफरत वगैरह में होना? प्यार भरा होना सुखद है। जीवन का ज्यादा समझदारी भरा तरीका कौन सा है, सुखद या दुख भरा? सुखद। देखिए, मैं तो प्यार करना चाहता हूं, लेकिन ये दुनिया ठीक नहीं है। अगर हर इंसान प्यार करने लगे तो मैं भी प्यार करने लगूंगा। आप आखिरी बेवकूफ होना चाहते हैं? अगर हर कोई प्यार करेगा तो आप भी प्यार करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्यार करता है और कौन नहीं। आपके लिए प्यार में होने में समझदारी है कि नहीं? प्यार में होना आपके लिए सुखद और सुंदर है, ये किसी और के बारे में नहीं है। आपका जीवन खूबसूरत हो जाता है ना? और अगर आपका जीवन खूबसूरत हो जाता है तो जाहिर है कि उसका असर आपके आसपास की हर चीज़ पर पड़ेगा। आप कितना बड़ा दायरा बनाते हैं यह आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। देखिए, अभी पूरी ईशा फाउंडेशन स्वयं सेवा से चल रही है। मैं चाहे जहाँ भी चला जाऊँ, एक समय था जब मैं बिजनेस कर रहा था और मैंने लगभग आधा दर्जन बिजनेसेस चालू किए। मैंने जो भी काम किया उसमें सफलता मिली। तब मेरी माँ कहा करती थी,